हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 14वां अध्याय छठे श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, ययो तान पदः पुत्रो मुनिना गीत यार्भकः मृत्योः कृत्वैव मूर्धनि अंग्रिम आरुरो हरे पदम। इसका अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह भगवान के धाम पहुंच गया। तात्पर्य, अपना शरीर त्याग करते समय राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंत तथा अन्य पुरुष आए जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। उन्होंने अल्पायु में जब वे बालक ही थे इस संसार को त्याग दिया था, यद्यपि उन्होंने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त कर लिया था और उनके अपने कई पुत्र भी थे। चूंकि उन्हें इस संसार को छोड़ना था इसलिए मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और वे उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर आरूढ़ होकर उन महर्षि नारद की संगति के कारण सीधे विष्णु लोक पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान की लीलाएं सुनाई थीं। जिन्होंने मतलब महर्षि नारद ने। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मैत्रेय ऋषि ने उनको बताया विदुर जी को कि देखो वराह भगवान का कैसे प्राप्ति हुआ, कैसे प्रकट हुए थे वराह भगवान। तो विदुर जी कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं भर रहा, मुझे कुछ और बताओ, और मैं सुनना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया कैसे। मैंने सुना है कि हिरण्याक्ष जो है वो भगवान वराह द्वारा वध हुआ था, हिरण्याक्ष का, तो आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बताइए, है ना। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी बता रहे हैं, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, विदुर जी दो भगवान वराह के दो रूपों का वर्णन कर रहे हैं, दो अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। एक जो स्वयंभू मनु के समय में जो प्रकट हुए, उस समय उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा नहीं था, उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था और चले गए थे। लेकिन जब वराह भगवान प्रकट हुए चाक्षुष मनवंतर में, तो उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। तो विदुर जी ने दोनों कंबाइन करके बात चल रही है ये, है ना। सो उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे और डिटेल में बताइए कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों उन्होंने मारा, आखिर क्या रीज़न था कि वराह भगवान ने वध कर दिया हिरण्याक्ष का। तो मैत्रेय जो ऋषि हैं बहुत खुश हुए और उन्होंने विदुर जी को वीर शब्द से संबोधित किया, है ना। आपने पीछे पढ़ा होगा जो पांचवा जो श्लोक है उसमें मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे योद्धा। हालांकि विदुर जी कुरुवंश से थे तो उस लिहाज में कहा जा सकता है, लेकिन थे वो सूत पुत्र तो उनको क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता, नहीं। लेकिन क्योंकि वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे कि भव बंधन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसलिए मैत्रेय ऋषि उनको वीर शब्द से संबोधित कर रहे हैं, और आगे के श्लोक आप जब आगे सुनेंगे तो उसमें दोबारा जो मैत्रेय ऋषि हैं वो विदुर जी को वीर शब्द से संबोधित कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, है ना। वीर का मतलब ये नहीं है जो जाके जरूरी है कि तलवार से बंदूक से ही लड़ेगा तो ही वीर कहलाएगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान समझना चाहता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहता है, जो जागरूक है जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने के प्रति, वो व्यक्ति वीर है, वो व्यक्ति उदार है, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, है ना। वो उस व्यक्ति में देवी देवताओं के समस्त गुण उसके अंदर विद्यमान है, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वीर यहाँ पर। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा, देखो आपकी जो जिज्ञासा है बहुत अच्छी जिज्ञासा है आपकी, है ना। और वो अच्छी क्यों है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। और ये जो डिस्कशंस हैं, ये जो चर्चाएं हैं, ये श्रोता को, वक्ता को, प्रश्न पूछने वाले को, सबको मोक्ष दिलाने वाली है, भवबंधन से छुटकारा दिलाने वाली है। तो फिर उन्होंने छठे श्लोक में उसका प्रमाण दिया, जो आज का श्लोक है। आज का श्लोक प्रमाण है पांचवें श्लोक का। जब मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि देखो ये जो चर्चाएं हैं ये मोक्ष दिलाने वाली हैं, तो उन्होंने प्रमाण दिया कि देखो ये कथाएं नारद जी ने सुनाई थी महाराज ध्रुव को। तो क्या हुआ, महाराज ध्रुव इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने मृत्यु के सिर पे पैर रख के ऊपर चढ़ गए, वो पुष्पक विमान पे, है ना। जब नंद और सुनंद दोनों आए थे विष्णु दूत उनको ध्रुव महाराज को ले जाने के लिए, तो उनको सीढ़ियां नहीं दिख रही थी ध्रुव महाराज को, वो देख रहे थे सीढ़ियां कहाँ हैं इसकी। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, आई लेके अपना काम किया चली गई। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, मृत्यु देख रही थी चलो टाइम हो गया, फिर भी इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने महान भक्त हैं, चलो जब इनकी इच्छा होगी तो लेके चलूंगी। नहीं, मतलब मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, बहुत बड़ी बात है, है ना। सो मृत्यु ने क्या किया, मृत्यु ने उनको दंडवत प्रणाम किया महाराज ध्रुव को। और जब वो दंडवत प्रणाम कर रही थी मृत्यु, तो महाराज ध्रुव सीढ़ियां ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कहा सीढ़ियां है नहीं, चलो ये मृत्यु लेटी हुई है, मृत्यु के सिर पे पैर रखा, फटाक से चढ़ गए पुष्पक विमान पे। और भागवतम में आगे चौथे स्कंद में आप देखेंगे कि ध्रुव महाराज को इतनी शक्ति मिल गई थी भक्ति के कारण कि पूरी पृथ्वी डगमगा रही थी, है ना। जैसे हाथी पैर रखे तो नाव डगमगानी शुरू हो जाती है ना, ऐसी पूरी पृथ्वी डगमगा रही थी। देवी देवता तक परेशान हो गए थे, क्या हो गया, कैसे छुटकारा दिलाएं। तो भगवान विष्णु ने बोला चिंता मत करो, मेरा डिवोटी है, मैं अभी जाके उसको दर्शन देता हूँ, दर्शन के लिए सारे काम कर रहा है वो, तो मैं दर्शन दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, है ना, आप टेंशन मत लो। आप चौथे स्कंद में जाएंगे तो आपको ये वर्णन मिलेगा सातवें आठवें नौवें अध्याय में। सो ध्रुव महाराज महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं, है ना। और उत्तानपाद किसके पुत्र हैं, उत्तानपाद सो उत्तानपाद और जो मैं भी भूल गया किसके पुत्र हैं। सो ये दो भाई थे, है ना, प्रियव्रत और उत्तानपाद, है ना। तो स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी हैं, फिर स्वयंभू मनु हैं, फिर स्वयंभू मनु के, हाँ मनु के पुत्र नहीं थे मनु, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके परदादा हैं, हाँ ठीक है ना, तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु हैं, और स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे, है ना। और उत्तानपाद के फिर आगे दो पुत्र थे, उनकी दो पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि, है ना। तो जो मनु है स्वयंभू मनु वो उनके दादा है, और ब्रह्मा जी जो है उनके परदादा है ना। तो ये जो उनका वंश इस तरह से चल रहा है ना। और महत्वपूर्ण बात ये कि नंद सुनंद ने बोला कि आपके परिवार में आज तक तो कोई नहीं गया वहां पर जहां पे हम आपको ले जाने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी विष्णु लोक नहीं गए, स्वयंभू मनु भी विष्णु लोक नहीं गए, आप का नंबर लग गया। क्यों लग गया? महत्पाद रजोभिषेकम, क्योंकि आपने एक भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, महत जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आपने उनका संग कर लिया, है ना, उनकी आपको कृपा प्राप्त हो गई, है ना। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, हाँ, कौन भाग्य कारो संसार क्षण क्षयोन्मुख है, साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजाए। रेंग रहा था ये, है ना। कोई बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति होगा जिसका अगर संसार नष्ट होने वाला है, जिसका भवबंधन खत्म होने वाला है, तो साधु संग में उसकी कृष्ण में रति उत्पन्न हो जाएगी उसकी, है ना, उसकी रुचि बढ़ने शुरू हो जाएगी उसकी, है ना। और भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो भाग्य कैसे डिसाइड होगा, कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति पर महत कृपा हो रही है। तो उन्होंने कहा, देखो हम सुकृति की बात करते हैं तो सुकृति तीन तरह की होती है, है ना। एक सुकृति होती है भक्ति उन्मुखी, और एक सुकृति होती है भोग उन्मुखी, और एक सुकृति होती है मोक्ष उन्मुखी। तो उन्होंने कहा जो भोग उन्मुखी है और जो मोक्ष उन्मुखी भक्ति है इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जो परिणाम है वो अस्थाई है, है ना। भोग के बारे में तो सबको पता ही है, नहीं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, कि भोग उन्मुखी अगर आपको सुकृति है तो चलो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, कोई व्यक्ति मिल गया उसने बोला कुएं खुदवा दो, धर्मशालाएं बनवा दो, स्कूल बनवा दो, गरीबों की शादियां करवा दो, खाना खिला दो लोगों को, तो बहुत सारे उसको फल मिले, उसके वो फल के परिणाम स्वरूप वो स्वर्गलोक पहुंच गया, नहीं। लेकिन वो स्वर्गलोक पहुंच के भी उसने भोग किया और दोबारा से नीचे आ गया। इसी तरह से भागवतम में जो मोक्ष है उसको भी अस्थाई टेम्परेरी बताया, और भागवतम में बोला गया है क्योंकि उसकी रुचि उत्पन्न नहीं हुई, भगवान के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उसने भगवान के चरण कमलों का अनादर किया, उनकी सेवा नहीं की, पूजा नहीं की भगवान के चरण कमलों की, इसलिए वहां पर भी मोक्ष के अंदर भी बहुत ज्यादा देर तक टिका नहीं रह पाएगा। मान लिया कि स्वर्ग लोक में हजारों साल तक भोग करके नीचे आ जाएगा, मोक्ष के अंदर करोड़ों वर्ष तक टिका रहेगा फिर भी नीचे आ जाएगा। तो मोक्ष स्वर्ग लोक भोग से अच्छा दिख रहा है लेकिन अस्थाई है, है ना। ब्रह्मा जी की आयु करोड़ों वर्ष है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं बुलबुले की तरह है। यस्य एक निश्वसित कालम अथवलंब्य जीवंती लोम विलिजा जगदंडनाथा, भगवान एक श्वास छोड़ते हैं हम पैदा हो जाते हैं, भगवान श्वास अंदर खींचते हैं हम मर जाते हैं, है ना। तो सांस छोड़ने में और खींचने में टाइम ही कितना लग रहा है, दूसरे लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बहुत टाइम से जी रहा है, नहीं, लेकिन जो इंटेलिजेंट है जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनको बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि मतलब भगवान की एक सांस छोड़ने के अंदर ही सारा काम हो रहा है ना। इसीलिए कभी भी वो अभिमान नहीं करते, कई बार मोहित हो जाते हैं लेकिन अभिमान नहीं करते कि ये हो गया, देखो मेरी आयु कितनी बड़ी है करके, है ना। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि जो बेस्ट सुकृति है वो भक्ति उन्मुखी सुकृति है, जिसके द्वारा व्यक्ति भक्तों के संग में उसकी रुचि आ जाती है, वो जाके भक्तों का संग करता है ना। और चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है, गुरु अंतर्यामी रूपे शिखाए आप बने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर कोई इस्कॉन में क्यों नहीं आता, और इस्कॉन में भी अलग अलग तरह के डिवोटीज हैं, नहीं। सो लोग जो सबसे अच्छा डिवोटी है उसके साथ क्यों नहीं जुड़ता जाके, नहीं। ये सारी चीज व्यक्ति के सुकृति पर, उसकी रुचि पर, उसके स्वभाव पर निर्भर करती है ना। जो लोग चाहते हैं कि हमसे छल हो, वो ऐसे व्यक्ति से, किसी ढोंगी व्यक्ति से जाके मिल जाएंगे, और उसको ढोंगी व्यक्ति से मिलवा कौन रहा है, उसको ढोंगी व्यक्ति से कृष्ण मिलवा रहे हैं, नहीं, क्योंकि कृष्ण उसके हृदय में बैठे हैं। कृष्ण को पता है कि इसकी मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है, इसकी क्या इच्छा है, तो उसकी इच्छा के अनुरूप वो लोगों को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग ढोंगी साधुओं से भी मिलवाते हैं। वो कृष्ण ही मिलवा रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी इच्छा है, दोष नहीं दे सकता किसी को, है ना, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। आपकी अपनी इच्छा थी, भगवान ने तो सिर्फ पूरा किया। भगवान का दोष यही है कि उन्होंने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया, और भगवान पे दोष नहीं दिया जा सकता, नहीं, इच्छा हमारी है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, कि अर्जुन इच्छा तुम्हारी है, इच्छा जीव की होती है, मैं तो सिर्फ पूरा कर रहा हूं, मेरा काम पूरा करना है, मेरा काम इच्छा करना नहीं है। आपके लिए, अपने लिए मेरे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं। आनंदमय अभ्यासा, कृष्ण रस के आगार है, कृष्ण हमेशा आनंद की तलाश में रहते हैं, तो कृष्ण की बहुत सारी इच्छाएं अपने लिए। जो बद्ध जीव है उसके लिए कृष्ण उदासीन रहते हैं, जो उसकी इच्छा होती है उसके अनुसार कृष्ण उसको, उसके बैंक बैलेंस को देख के, उसकी सुकृति को देख के कृष्ण उसको फलीभूत कर देते हैं उसकी इच्छा को, है ना। और अगर कोई बहुत भाग्यवान व्यक्ति है, साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है संसार या ईश्वर, है ना। भक्ति का फल प्रेम है, और प्रेम का मतलब क्या होता है, भक्ति। भक्ति और प्रेम कुछ अलग अलग वस्तुएं नहीं है। अगर हमारी अगर हम गंभीर हैं, अगर हमारी जो इच्छा है, अगर सरल इच्छा है हमारी, स्पष्ट साफ इच्छा है, हम छल नहीं करना चाहते भगवान से, तो भगवान ऐसे साधुओं का संग देंगे जिससे हमारी भौतिक इच्छाएं जो हैं वो कट जाएंगी। इसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, ना, अनर्थ निवृत्ति होगी तो हमारे साधु संग में और रुचि बढ़ेगी, हरि नाम में हमारी रुचि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये सारे काम होंगे साधु संघ के द्वारा। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि मुझे ये बताओ कि सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है किसी व्यक्ति के जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो रामानंद राय ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण घटना है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कि किसी व्यक्ति को साधु संग मिल जाए। इससे आ रही है। अच्छा, साधु संग अगर मिल गया तो वो उस व्यक्ति के लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भाग्यशाली घटना है, क्योंकि उस साधु संघ के कारण उसकी संसार में रुचि खत्म हो जाएगी, हरि नाम में रुचि बढ़ जाएगी, है ना। जिस प्रकार भागवतम में उदाहरण दिया गया है कि जैसे हम कोई बहुत ही भूखा व्यक्ति है, अगर वो भोजन करे, है ना, वो भोजन करेगा तो भोजन करने से क्या होगा, वो भोजन करेगा तो हर कौर के साथ, हर जो वो एक ग्रास, हर ग्रास के साथ क्या होगा, उसकी भूख मिटती चली जाएगी, है ना। और क्या होगा, हर ग्रास के साथ उसका शरीर भी पुष्ट होता चला जाएगा। इसी तरह से जब व्यक्ति साधु संघ में आएगा, जब व्यक्ति को महत कृपा प्राप्त होगी, तो हरि नाम में रुचि भी बढ़ेगी और संसार में रुचि घटेगी। दोनों चीजें जो है वो साथ साथ घटित होंगी, ऐसा नहीं है अलग अलग घटित होंगी, है ना, साथ साथ घटेंगी। दिखने में लगेगा कि एक साथ घटित हो रही है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति भी होती चली जाएगी, और हरि नाम में जितनी अनर्थ निवृत्ति होगी उतना हरि नाम में रुचि भी बढ़ती जाएगी। इसको बोलते हैं नामा अपराध से नामाभास की ओर बढ़ना। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि वो एक न्याय की बात करते हैं, शतपत्र भेदन न्याय। तो वो बोलते हैं कि जैसे आपने 100 पत्ते एक के ऊपर एक रख दिए, है ना, फिर आपने एक सुई ली और उस सुई से आपने 100 पत्तों को आपने एकदम से भेदा, उसको उस पर पिन मारी, तो दिखने में लगेगा, दिखने में क्या लगेगा कि 100 के 100 पत्ते एक बार में उसमें छेद हो गया। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसको पता है कि सबसे पहले ऊपर वाले पत्ते में छेद हुआ, फिर दूसरे नंबर पत्ते वाले में छेद हुआ, फिर तीसरे नंबर पत्ते में छेद हुआ, है ना। सुई जो है पहले सबसे ऊपर वाले पत्ते को छेदेगी, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे को। लेकिन वो इतनी तेज होता है कि लगता है कि एक इकट्ठे ही हो रहा है सारा काम, है ना। इसीलिए जितनी मात्रा में हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी उतनी मात्रा में हमारी हरि नाम में रुचि, साधु संग में रुचि बढ़ेगी। ये साधु संग का प्रभाव है। अगर हम, ये महत कृपा है, अगर हम एक साधु के संग में रहेंगे तो साधु संघ के प्रभाव से हमारा भक्ति में रुचि आएगी। हम अपने आप से भी प्रयास कर सकते हैं, हम अपने आप से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना असर नहीं होगा उसका, है ना। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति ने। आप कुछ भी कर लो, जब तक महत कृपा नहीं होगी, जब तक एक साधु की कृपा नहीं होगी, तब तक आप भक्ति नहीं हो सकती, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नए शय। कृष्ण भक्ति की बात छोड़ दो, संसार में आसक्ति भी कम नहीं होगी। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, है ना। तो आप बोल सकते हो कि क्या हम लोग अगर चैतन्य चरितामृत पढ़े, भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, अगर हम स्वयं से पढ़े तो क्या हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या महत कृपा प्राप्त होगी या नहीं होगी, नहीं तो क्या इसका उत्तर है, हाँ क्या कहते हो आप लोग। अगर हम भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत अगर हम पढ़ते हैं तो महत कृपा प्राप्त होगी। कैसे होगी, अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं, तो हम सीधे श्रील प्रभुपाद का संग कर रहे हैं, नहीं? इस्कॉन के अंदर बहुत सारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद सबके शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन में कोई भी भक्त है, श्रील प्रभुपाद उसके बाय डिफॉल्ट शिक्षा गुरु हैं। अगर हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें श्रील प्रभुपाद का संग करने का अवसर मिलता है, जिसको वाणी संग कहते हैं। और अगर हम श्रील प्रभुपाद का संग करेंगे तो श्रील प्रभुपाद की हमें कृपा प्राप्त होगी, इसी को बोलते हैं महत रजोभिषेकम, कि हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त होगी। ये बात साथ में जरूर है कि श्रील प्रभुपाद के जो व्याख्याएं हैं उसको समझने के लिए अगर हम उनके शिष्यों का अगर हम संग करते हैं, और उनके शिष्यों के जो आगे शिष्य हैं उनका अगर हम संग करते हैं, जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभुपाद के की व्याख्याओं को और अच्छे से बता सकते हैं, तो हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। और हम श्रील प्रभुपाद कितनी महत्वपूर्ण बातें कितने सरल शब्दों में बता रहे हैं ये हम समझ पाएंगे। अगर हम ये समझ लेंगे तो इससे हमारी जो श्रद्धा है वो श्रील प्रभुपाद में बढ़ेगी। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सारे कार्यों का, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, उसका हमारा लक्ष्य है कि हमारे श्रील प्रभुपाद में श्रद्धा बढ़े। इस्कॉन में बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे अच्छे और सुपर अच्छे भक्त हैं, लेकिन उन सारे भक्तों का एक ही कार्य है कि जिन भी भक्तों का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं उनकी जो श्रद्धा है वो श्रील प्रभुपाद में विकसित हो। क्यों विकसित हो? महत पाद रजो अभिषेकम, कि अगर श्रील प्रभुपाद में हमारी श्रद्धा विकसित होगी तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को गंभीरता से पढ़ेंगे। अगर हम गंभीरता से पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे। गंभीरता से पढ़ने का मतलब क्या है? गंभीरता से पढ़ने का मतलब ये है कि इस सोच के साथ पढ़ना कि जो भी ये शिक्षाएं हैं मैं उसको अपने जीवन में कैसे उतारूं, ये गंभीरता का मतलब है। गंभीरता का मतलब ये नहीं है कि बहुत हाथ पैर धो के अच्छे से और धूप बत्ती जलाकर और एक टारगेट लेके पढ़ना, वो भी अच्छा है, लेकिन जो वास्तविक गंभीरता है वो है कि मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूँ इसको अपने जीवन में कैसे उतारूं। अगर हम जब तक इस सोच के साथ हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो वो किताबी ज्ञान बन के रह जाएगा। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारेंगे? प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हम उतारने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं हम, क्योंकि हम सोचते नहीं इसको जीवन में कैसे उतारने। अगर हम उसको अपने जीवन में उतारने के बारे में सोचेंगे, मनन करेंगे, प्रयास करेंगे तो कैसे भूल जाएंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता भूलने के लिए, नहीं? तो गंभीरता से पढ़ने का मतलब है कि हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और जब हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि कैसे इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतारें। तो उन डाउट्स को दूर करने के लिए हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, भक्तों की शरण लेनी पड़ेगी, उनसे हमें प्रश्न पूछने पड़ेंगे। जो भक्त प्रश्न ही नहीं पूछते इसका मतलब है उनमें कुछ जिज्ञासा नहीं है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। एक बार मैं एक बहुत अच्छे सन्यासी हैं, महान सन्यासी हैं, तो मैं इस कौन में जुड़ा ही था, तो मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने लास्ट में सब चले गए तो मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा कोई प्रश्न है, तुम्हारे कुछ डाउट है क्या? मैंने बोला मुझे कोई डाउट नहीं है, तो बोले तुम तो भगवान हो तुम्हें डाउट ही नहीं है। मैंने बोला मैं भगवान नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ, कोई डाउट ही नहीं है मेरे दिमाग में। वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना, जो बेवकूफ है अज्ञानी है वो सोचता रहता है यार सब ठीक चल रहा है ना, सब बढ़िया है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बेवकूफ मत बने रहो, बेवकूफ बने रहने में अच्छाई नहीं है। आप बेवकूफ हो, मान लिया बेवकूफ हो, लेकिन बेवकूफ बने मत रहो। वेदों का जो शिक्षा है, वेदों का आदेश है तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधकार में हो मान लिया, रहो मत अंधकार में। तमसो मां अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है, हो ठीक है, आपका प्रारब्ध था अंधकार में गिर गए, लेकिन आपके पास फ्री विल है, आपके पास इच्छा है कि आप इस अंधकार से बाहर निकल सकते हो। ज्योतिर्गम्य प्रकाश की ओर जाओ, ज्ञान की ओर जाओ, अंधकार में मत रहो। तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाएंगे? कोई हमारा हाथ पकड़कर लेकर जाएगा। वो जो हाथ पकड़कर कौन लेके जाएगा? हाथ पकड़कर लेके जाएगा एक साधु। और उस साधु की क्वालिफिकेशन क्या है हाथ पकड़ने की? कि उसका हाथ भी किसी ने पकड़ा हुआ है, एक चेन बनी हुई है। अगर उसने दाएं हाथ से आपका हाथ पकड़ लिया और उसका बायां हाथ किसी और ने नहीं पकड़ा हुआ, बेकार है। अंधा यथा अंधेर उपनियम आना, किसी ने हाथ तो पकड़ लिया वो ही अंधा है, तो क्या फायदा होगा? वो भी गड्ढे में गिरेगा, और क्योंकि वो गड्ढे में गिरा है उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आप बोलो छोड़ो मेरा हाथ, बोलेंगे मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूं, घबराओ मत। गड्ढे में गिर गया, साथ में गड्ढे में कौन गिरेगा? हम भी साथ में गड्ढे में गिर जाएंगे। तो चेक कर लो जिसका संग कर रहे हो, चेक कर लो कि मेरा हाथ तो इसने पकड़ लिया, इसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ। यही गुरु परंपरा है। अगर हम ऐसे भक्तों का संग नहीं कर रहे जो जिसका हाथ किसी और ने नहीं पकड़ा हुआ, तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है ना। सो महत व्यक्ति कैसे बनेगा? महत बनने के लिए उसके पास अपना कुछ गुण नहीं होता, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला मुझ में कुछ क्वालिटी नहीं है, लेकिन एक गुण है मेरे में कि मैं पोस्ट मास्टर हूं, मैं पोस्टमैन हूं। मेरे पास पैसे नहीं है अपने, लेकिन आपके लिए मेरे पास 1 करोड़ का मनी ऑर्डर है। मेरे जो गुण है वो ये है कि मैं वो 1 करोड़ का मनी ऑर्डर आया, मैंने आपको पूरे 1 करोड़ रुपए पकड़ा दिए, मैंने उसमें से 1 रुपया भी नहीं रखा। यही क्वालिफिकेशन है मेरी। अगर किसी व्यक्ति में ये गुण है, हो सकता है कि वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो, हो सकता है कि वो योग के अंदर बहुत महान नहीं हो, लेकिन अगर वो अगर उसकी प्रभुपाद में अपने गुरु में श्रद्धा है, अगर वो उनकी बातों को गंभीरता से ले रहा है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, और उसको इस बात की जानकारी है कि प्रभुपाद का मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है और इतना संवेदनशील है कि एक भी चीज फुल स्टॉप कॉमा भी इधर उधर किया तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं। जिस व्यक्ति को इस बात के बारे में पता है, ये गुण उसको महत के स्तर पे लाकर खड़ा कर देगा। सिर्फ ये गुण कि कुछ चेंज नहीं करना। एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, यानी मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो वो एक वीडियो था, उसमें एक वो जैपनीज लेडी थी, वो बैलेंसिंग दिखा रही थी। तो उसने एक लकड़ी ली, उसके ऊपर उसने एक गुलाब की पंखुड़ी रखी उसने, फिर उसने कई लकड़ियां एक के ऊपर एक रखती रही वो, और वो सारी लकड़ियां जो है वो एकदम परफेक्ट बैलेंस में थी। और लास्ट में जाके उसने जैसी वो गुलाब की पंखुड़ी को उठाया, सारी लकड़ियां नीचे गिर गई, एक गुलाब की पंखुड़ी से पूरा बैलेंस चल रहा था। इतना इतना संवेदनशील था वो बैलेंस। इसी तरह से जो प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, जो गुरु परंपरा की शिक्षाएं हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं। हल्का सा भी कुछ बदलाव कर दिया, खराब हो जाएगी सारी चीज। आप लोग कभी रेलवे स्टेशन, आप सब लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे कभी ना कभी, है ना। बॉम्बे जाने वाली, कलकत्ता जाने वाली, साउथ जाने वाली ट्रेन एक ही दिशा में बढ़ती हैं आगे, एक ही पटरी होती है, फिर हल्का सा एक सूत का फर्क आ जाता है, फिर वो फर्क धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। एक ट्रेन पूर्व चली जाती है, एक ट्रेन पश्चिम चली जाती है। तो कई बार लगता है कि यार कोई डिफरेंस नहीं है, सब ठीक तो चल रहा है, वो ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, कुछ खास फर्क तो लग नहीं रहा। लेकिन वो जो कुछ खास फर्क नहीं लगता है शुरू में, वो आगे जाके खास बन जाता है। और एक ट्रेन पूर्व में चली जाती है, एक ट्रेन पश्चिम में चली जाती है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे भक्तों का संग करते समय, अगर हम सजग नहीं रहेंगे, अगर आपको आप गलत शिक्षा ले रहे हो, उसकी जिम्मेदारी आप किसी और पे नहीं थोप सकते, आपको आप खुद जिम्मेदार हो। आपको ही देखना पड़ेगा कि आप शिक्षा कैसे किससे ले रहे हो और क्या शिक्षा मिल रही है आपको, है ना। अगर आप अच्छे शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे, उसमें किसी और का दोष नहीं है, सारा दोष हमारा ही है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम अच्छे भक्तों का संग करें, अच्छी शिक्षा लें, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ें राइट डायरेक्शन में। अभी तो पूर्व और पश्चिम जाने वाली दोनों ट्रेन लग रहा है कि इकट्ठे चल रही हैं, धीरे धीरे फासला बढ़ता जाएगा और पता भी नहीं चलेगा हमें। और जैसे आप सपोज दुरंतो ट्रेन में बैठ गए या एरोप्लेन में बैठ गए, अब आपको पता चल गया यार गलत ट्रेन में बैठ गया, क्या करूं, तो अब बैठ गए, अब उतर नहीं सकते, नहीं बहुत प्रॉब्लम है, उतर नहीं सकते। आपको पहले से ही सजग रहना पड़ेगा। जैसे अभी पीछे मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति था, उसको अमेरिका से डिपोर्ट कर रहे थे, उसको निष्कासित कर रहे थे, भगाओ इसको, तो उसको जेट एयरवेज की फ्लाइट में जबरदस्ती उसको बिठा दिया। अब वो जाना नहीं चाहता था, उसको पता था कि मैं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं मर जाऊंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो सारे लोग डर गए, उन्होंने बोला बाहर निकालो भैया इसको, ये गड़बड़ कर देगा, तो उसको प्लेन से बाहर निकाल दिया, है ना। इसी तरह से अगर आप गलत ट्रेन या गलत प्लेन में चढ़ जाओ, तो शोर मचाना शुरू कर दो, ये भैया उतारो मेरे को फटाफट, क्योंकि एक बार प्लेन ने अगर उड़ान पकड़ ली फिर नीचे नहीं उतर सकते, क्योंकि फिर हमारा जो माइंड है वो उन शिक्षाओं को सही समझना शुरू कर देगा। हमें गलत चीजें सही लगने लग जाएंगी, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छे सिंसियर भक्तों का संग करें, जो प्रभुपाद के संदेश को यथारूप आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को महत्पाद रजोभिषेकम कहते हैं। यही साधु संघ है, इसी साधु संघ के माध्यम से जो बद्ध जीव है, ये प्रमाण दिया जा रहा है यहाँ पर कि अगर कृष्ण कथा की जाएगी सही साधु संघ के अंदर, तो आप सब भी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर परिवार समेत आप लोग भगवत धाम चले जाओगे। हरे कृष्णा।